I know afternoon class is more difficult.
मुझे मालूम है कि दोपहर की जो कक्षा होती है बहुत मुश्किल होती है.
When I'm teaching in China.
जब मैं चीन देश में पढ़ाता हूँ.
At 3 o'clock.
3 बजे.
Everyone is listening.
सब लोग सुन तो रहे हैं.
3:30.
3:30.
They're like this.
वो लोग इस तरह से हो जाते हैं.
4 o'clock.
4 बजे.
I know it is difficult.
मुझे मालूम है कि ये मुश्किल है.
And I know you are tired.
और मुझे मालूम है कि आप थके हुए हैं.
But we must pray God would help us to hear the word of God.
लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें.
Because this is the most important subject of all.
क्योंकि ये सारे विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है.
True biblical holiness.
सच्ची बाइबल के अनुसार पवित्रता.
We've talked about the necessity of holiness.
हमने बात किया था पवित्रता की आवश्यकता.
The foundation of holiness.
पवित्रता की बुनियाद.
The definition of holiness.
पवित्रता की परिभाषा.
Now we're talking about the expressions of holiness.
और अब हम बात करेंगे पवित्रता की अभिव्यक्ति.
Where is holiness to be expressed?
हम कहाँ पवित्रता को व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे?
According to Paul, it's the whole man.
पौलुस के अनुसार ये संपूर्ण मानव है, संपूर्ण पुरुष है.
Not just outwardly, but inwardly.
केवल बाहरी तौर से नहीं, लेकिन परंतु अंदर से.
True holiness begins within.
और सच्ची पवित्रता जो है अंदर, भीतर आरंभ होती है.
And when the Bible talks about the inward man,
और जब बाइबल बात करती है अंदरूनी व्यक्ति की,
it talks about the heart,
उस वो बात करते हृदय की,
the mind,
मस्तिष्क की,
the will,
इच्छा की,
and the conscience,
और विवेक की.
Every part of the inward man is to be growing in holiness.
मनुष्य के प्रत्येक भीतरी हिस्से हैं, उनको पवित्रता में बढ़ना है.
The motives of the heart must be pure.
हृदयों का जो उद्देश्य है उसको शुद्ध होना है.
We are talking about having holy motives.
हमने बात किया है कि हमारे पास शुद्ध पवित्र उद्देश्य होने चाहिए.
If your motives are impure, it will poison your ministry.
अगर आपके उद्देश्य अशुद्ध होंगे तो आपकी पूरी सेविकाई में जहर का काम करेगा.
You may preach, but there's no influence.
आप हो सकते प्रचार तो कर पाएंगे, लेकिन आपके पास कोई प्रभाव नहीं होगा.
You may serve, but there's no power.
आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप में कोई सामर्थ्य नहीं होगी.
There can be a hindrance in the heart.
और हृदयों में एक रुकावट होगी.
Motive is the most important thing.
और जो उद्देश्य है, जो मंशा है, वो बहुत जरूरी बात है.
The glory of God.
परमेश्वर की महिमा.
The fear of God.
परमेश्वर का भय.
To please God,
उसको प्रसन्न करना.
The judgment seat of Christ,
परमेश्वर के न्याय का सिंहासन.
The love for the souls of men,
लोगों के प्राणों के लिए प्रेम.
These are holy motives.
ये सब पवित्र उद्देश्य हैं.
Now there are many other motives in the Christian life.
और मसीही जीवन में इससे बढ़कर के भी और भी कई उद्देश्य हैं.
And I encourage you to pray continually for pure motives.
और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप निरंतर प्रार्थना करें अपने लिए शुद्ध उद्देश्यों के लिए.
You can do the right thing for the wrong reason.
ऐसा संभव हो सकता है कि आप सही काम कर सकते हैं गलत इच्छा से, उद्देश्य से.
But if you seek your own glory,
अगर आप अपने स्वयं की महिमा ढूंढेंगे,
if you preach yourself,
यदि आप स्वयं का प्रचार लोगों के सामने करेंगे,
if you fear man,
यदि आप लोगों से भय करेंगे,
if you're not willing to tell the truth,
और अगर आप लोगों को सच बताने की तैयार नहीं है,
if you're seeking benefit,
और अगर आप केवल फायदा ही ढूंढ रहे हैं अपना,
if you want to please man,
केवल आप लोगों को खुशी करना मांगते हैं,
you cannot be a servant of Christ.
आप मसीह के सेवक नहीं बन सकते हैं.
We cannot have wrong motives.
हम गलत उद्देश्यों को लेकर नहीं सेवा कर सकते. आइए हम लोग कई पदों को देखेंगे.
We're still talking about the motives of the heart.
हम अभी भी हृदय के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं.
Wrong motives.
गलत उद्देश्य.
Look in the Gospel of John.
यूहन्ना के सुसमाचार में देख लीजिए.
We need to examine our hearts.
हम अपने हृदयों को जांचेंगे.
And in John chapter 12.
और यूहन्ना के 12 अध्याय में.
Verse 42.
योना का 12 है, इसका 42 पद.
Many of the rulers believed in him because the Pharisees, they were not confessing him. They feared they would be put out.
बहुत से अधिकारियों ने उस पर विश्वास किया लेकिन फरीसियों के कारण उस पर नहीं अंगीकार कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो बाहर निकाल ले जाएंगे 43 पर उनका उनका उद्देश्य क्या था उनकी मनसा क्या थी यहाँ पे पद देखिए 43 पद देखिए क्योंकि वो मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा पसंद कर रहे
थे
यदि आप लोगों की प्रशंसा को ढूंढ रहे हैं तो आप सत्य का कभी भी नहीं करेंगे
If you're seeking to please man, you cannot please Christ.
यदि आप लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कभी भी मसीह को खुश नहीं कर सकते
Look in the book of Galatians.
गलतियों की पुस्तक में देखिए मेरे साथ
Chapter 1.
पहला अध्याय
Very familiar verse.
बहुत ही जाना पहचाना पद है
Verse 9.
नवपद
If any man preach to you a gospel contrary to what you receive, he to be accursed.
और जो समाचार तुमने स्वीकार किया यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुमने सुनाए तो वो शापित है
Verse 10.
दसवां पद
Am I seeking the favor of man or of God?
क्या मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की
Am I striving to please men?
क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ
If I'm pleasing men, I wouldn't be a servant of Christ.
यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ तो मसीह का दास नहीं होता
If you try to please men,
यदि आप लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे
you will not Clearly preach the truth.
तब आप स्पष्टता के साथ सत्य का प्रचार नहीं करेंगे
If you try to please men,
यदि आप लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे
you will not clearly preach the gospel.
तो आप स्पष्टता के साथ समाचार नहीं प्रचार करेंगे
If you try to please men,
यदि आप लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास
you
करेंगे
will not have courage to tell the truth.
तब आपके पास साहस नहीं होगा कि लोगों को सत्य बताएं
We must fear God and not man.
हमें लोगों से नहीं डरना है बल्कि परमेश्वर से डरना है
We must think about the eye of God, not the eye of man.
हमें लोगों के आंखों के बारे में नहीं सोचना नजर के बारे में लेकिन परमेश्वर की निगाह के बारे में
सोचना
हमें परमेश्वर के मुख के बारे में सोचना है चेहरे के बारे में ना कि लोगों के चेहरों के बारे में
Many preachers are paralyzed.
और बहुत सारे जो प्रचारक होते हैं उनको लकवा मार जाता है
Their hands are tied.
उनके हाथ बंधे होते हैं
They're not willing to tell people the truth.
वो लोगों को सत्य बताने के लिए तैयार नहीं है
Because in their heart they have a wrong motive.
क्योंकि उनके हृदयों में गलत मनसाएं उद्देश्य हैं
They want the approval of man.
वो लोगों की प्रशंसा चाहते हैं
They want to please man.
वो लोगों को खुश करना मांगते हैं
They want to be popular with man.
वो लोग सामने प्रसिद्ध होना मांगते हैं
They want to have a big reputation.
और वो अपना बड़ा नाम चाहते हैं
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए
If you're going to preach the truth,
अगर आप सत्य का प्रचार करेंगे
If you're going to preach the true gospel,
अगर आप सच्चे समाचार का प्रचार
If you're going to preach true conversion,
अगर आप सच्चे हृदय परिवर्तन का प्रचार करेंगे
If you're going to preach men to repent and believe,
अगर आप लोगों को प्रचार करेंगे कि वो पश्चाताप करें और विश्वास करें
Speak specifically to their heart.
अगर आप सीधे तौर पर उनके हृदय से बात करेंगे
you will not be popular.
तो आप बहुत प्रसिद्ध नहीं होंगे
Sometimes people will not accept you.
और कोई हो सकता है लोग आपको स्वीकार भी ना करें
If you want to be popular,
अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं
If you want to be famous,
अगर आप बहुत ख्याति चाहते
हैं If you want to have a big outward ministry,
अगर आप एक बाहरी तौर से बड़ी सेवा चाहते हैं
you cannot please God.
तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते
Wrong motives will strangle a man.
और जो गलत उद्देश्य हैं वो आदमी के गला दबा देंगे
It will tie his hands.
वो उसके हाथों को बांध देंगे
The Pharisees loved the approval of man.
जो फरीसी लोग थे वो लोगों की प्रशंसा बहुत पसंद करते थे
If a man is seeking after money,
अगर एक आदमी है जो पैसे के पीछे लगा हुआ है
If a man is seeking after material benefits,
और अगर एक आदमी है जो भौतिक फायदे की ओर लगा हुआ है
He cannot be a servant of Christ.
वो एक मसीह का सेवक नहीं हो सकता
The motives of the heart are very important.
जो हृदय के जो उद्देश्य मनसा है बहुत ही महत्वपूर्ण है
So examine your heart.
तो भाइयों अपने हृदय को जांचिए.
Ask God to search your heart.
और परमेश्वर से कहिए मेरे हृदय को आप जांचिए.
Ask God to purify your heart.
और परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे हृदय को पवित्र शुद्ध बनाइए.
If you don't live on your knees,
अगर आप अपने घुटनों पे नहीं जी रहे हैं,
your motives will be impure.
तो जो आपके जो उद्देश्य हैं वो अशुद्ध होंगे.
Holiness begins within.
और जो पवित्रता है वो अंदर से शुरुआत होती है भीतर से.
The motives of the heart.
और जो हृदय के उद्देश्य
नंबर टू
दूसरी बात
द थॉट्स ऑफ द माइंड
और जो मस्तिष्क के विचार
Now the motives are very deep.
दूसरी बात मस्तिष्क के विचार जो उद्देश्य बहुत गहरे हैं
they never come to the surface.
वो उद्देश्य कभी बाहर दिखाई तो नहीं देते सतह पर
they feed the heart.
लेकिन वो हमारे हृदय को
they move our actions.
और वो मेरे हमारे को कार्य करने पर बाध्य करते हैं
But the thoughts come to the surface.
लेकिन जो विचार है वो सतह पे बाहर आते हैं
Those are the things we're actually aware of. love. And the motives produce the thoughts. And you must guard the thoughts of your mind. What do we mean? Many times we have wrong thoughts. Prideful thoughts. Lustful thoughts. Jealous thoughts. Worldly thoughts. Angry thoughts. You must guard the thoughts of your mind. And the book of Philippians. And chapter 4. Verse 8. Very familiar verse. Finally, brethren, whatever is true,
पता है भाइयों जो बातें सत्य हैं जो जो बातें आदरणीय हैं जो जो न्याय संगत हैं जो जो बातें पवित्र हैं जो बातें मानो हैं जो जो बातें मन भावनी
हैं अर्थात
जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं उन्हीं का ध्यान क्या करो
Many times you hear another preacher preach.
और कई बार आप किसी और प्रचारक को सुनते हैं प्रचार करते हुए.
He has a greater gift than you have.
और उसके पास आपसे भी बड़ा वरदान है हो सकता है.
And you listen to the preacher.
और फिर आप उस प्रचारक को सुनते हैं.
And everyone thinks he's a wonderful preacher.
और सब लोग सोचते हैं कि वो बहुत बढ़िया प्रचारक है.
He has a big gift.
और उसके पास एक बड़ा दान है.
You have a little gift.
आपके पास छोटा दान है.
What are you thinking?
तो फिर आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में?
You must guard your heart.
आपको अपने हृदय को
If you have jealous thoughts,
अगर आपके मन में जलन भरे विचार आएंगे उसको लेकर के या फिर अगर आपके मन में घमंड वाले विचार आएंगे उसको लेकर के या आपको उसके प्रति बैर होता है
you have to fight against those thoughts.
आपको उन विचारों के प्रति लड़ाई करनी है
As a man thinks in his heart, so he is.
जो व्यक्ति अपने हृदय में जो विचार करता है उसी तरह का व्यक्ति बन जाता है
the devil is always trying to put sinful thoughts in our mind.
जो शैतान है वो हमारे मस्तिष्क में हमेशा पाप भरे विचार डालने का प्रयास करता है
our heart produces sinful thoughts in our mind.
हमारा हृदय जो है पाप भरे विचार प्रस्तुत करता है हमारे मस्तिष्क के लिए
And a man must guard his thoughts.
इसलिए एक मनुष्य को अपने विचारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है
A man preaches a sermon.
एक व्यक्ति एक प्रचार किया उसने
God gives him help.
और फिर परमेश्वर की सहायता करता है
He goes out the back door.
और फिर पीछे के दरवाजे की ओर जाता है
Everyone says, brother, that's a wonderful message.
और लोग कहते हैं भाई भाई बहुत बढ़िया संदेश था ये
He faces a great temptation.
और उस समय उसके सामने एक बड़ा प्रलोभन होता है
The temptation to pride.
और प्रलोभन क्या है कि वो घमंड कर सकता है
If you listen to the praise of men,
अगर आप लोगों की प्रशंसा को सुनेंगे
it's like drinking a little wine.
और ये एक थोड़ी सी शराब मदिरा पीने के समान है
you drink a little wine.
और थोड़ा सा आप शराब पियेंगे
You listen to some more praise.
और फिर आप थोड़ी और प्रशंसा को सुनते हैं
You drink a little more.
और फिर आपने थोड़ा और शराब पी लिया
A little more.
थोड़ा और
And what happened?
फिर क्या हो जाता है
You're drunk.
आप गिर जाते हैं
With the praise of men.
लोगों की प्रशंसा से
Guard your heart.
अपने हृदय को जांच के रखिए
Guard your mind.
अपने मस्तिष्क को संभाल के रखिए
Now, let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
Do you ever think about what you think about?
क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या आप क्या सोचते हैं आप अपने सोचने के बारे में कभी सोचते हैं
Many men don't think.
बहुत सारे लोग इसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं
All day their mind is empty.
और पूरे दिन उनका मस्तिष्क जो है खाली पड़ा हुआ है
Their head is up in the clouds.
उनका जो सर है वो हवा में घूम रहा है
They never think serious thoughts.
और वो गंभीर विचारों को कभी करते ही नहीं है
Empty thoughts.
और खाली खोखले विचारों को करते हैं दुनियावी विचारों को
Proud thoughts.
घमंड से भरे विचारों को
Lustful thoughts.
वासना से भरे विचारों को
You must guard your mind.
आपको अपने मस्तिष्क की सुरक्षा करना आवश्यक है
And when an evil thought comes in,
और जब हमारे अंदर एक दुष्ट भरा विचार आता है
you need to reject it.
तो आपको हमको क्या करना है एकदम से उसको तिरस्कार करना है
Pray God would cleanse your mind.
और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मस्तिष्क को साफ कर देगा
And bring the word of God to bear on that problem.
और परमेश्वर के वचन को लाना है उस स्थिति से संबंध में
God's interested in your thoughts.
परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है कि आप कैसे विचार रखते हैं.
Psalm 139.
भजन 139.
When you sit down,
जब आप बैठते हैं.
When you rise up,
जब आप उठते हैं.
Wherever you go,
जहां कहीं भी आप जाते हैं.
God sees you.
परमेश्वर आपको देखता
है. Before there's a word on your tongue,
इससे पहले कि आपके मुख पे कोई शब्द हो.
Before there's a thought in your mind,
इससे पहले कि आपके मस्तिष्क में कोई विचार हो.
God knows it all.
परमेश्वर सब कुछ जानता है.
You must develop a sense of the presence of God.
आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव को अपने अंदर बढ़ाना है.
You must constantly meditate upon the presence of God.
हमें निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति पे मनन करना चाहिए.
Wherever you go,
जहां कहीं भी हम जाएं.
The eye of God,
परमेश्वर की नजरें,
is on you,
हमारे ऊपर है.
And he knows your thoughts from afar.
वो हमारे विचारों को बहुत दूर से जानता है.
You need to pray that God would guard your mind.
हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा.
When I was a young pastor,
जब मैं एक जवान पासवान था,
I would sit in my study.
मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था.
And I would be sitting at my desk studying.
और मैं अपने टेबल में बैठकर के पढ़ाई कर रहा होता था.
And I would take a little break.
और फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता था.
And my mind would wander.
और फिर मेरा मस्तिष्क इधर उधर चला जाता.
And if you don't reach out and get your thoughts and bring them back in,
और अगर आप अपना हाथ बढ़ा करके उस विचारों को वापस अपने पास नहीं लेकर के आएंगे,
you will find yourself far away.
फिर आप क्या पाएंगे कि आप जो है दूर हट गए वहां से.
Thinking foolish thoughts,
और मूर्खतापूर्ण विचारों के बारे में सोच रहे हैं, और गलत विचार,
lustful thoughts,
वासना से भरे विचार.
You must guard your mind.
आपको अपने मस्तिष्क की सुरक्षा करना आवश्यक है.
Holiness begins in the heart.
पवित्रता हृदय से आरंभ होती है.
God desires purity in your thoughts.
और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विचारों में भी पवित्र बने.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
What do you think about most of the day?
आप अपने दिन में ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं?
If you don't discipline your mind,
यदि आप अपने मस्तिष्क को अनुशासन में नहीं रखेंगे,
you will waste time,
तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे.
Idle thoughts, empty thoughts,
खाली विचार, फालतू के विचार,
worldly thoughts,
संसारिक विचार.
You must control your mind,
आपको अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना है.
You must constantly be renewing your mind,
और आपको अपने मस्तिष्क को नया बनाते रहना है.
By the word of God,
परमेश्वर के वचन के द्वारा,
and by serious prayer,
और गंभीर प्रार्थना के द्वारा.
The motives of the heart,
हृदय के उद्देश्य,
the thoughts of the mind,
विचार, मस्तिष्क के विचार.
Listen carefully,
और ध्यान से सुनिए.
The testimony of the conscience,
और विवेक की गवाही.
Now the old Puritans said this.
और जो एक एक कुछ लोग थे जो प्यूरिटन थे, उन्होंने ये कहा, ये प्रभु के लोग थे.
The conscience is the preacher's best friend.
जो विवेक है वो एक प्रचारक का सबसे अच्छा मित्र होता है.
God wants you to have a pure conscience.
परमेश्वर चाहता है कि आपके पास एक शुद्ध विवेक हो.
What is the conscience?
विवेक क्या है?
It's the moral indicator, the moral thermometer, the moral barometer.
ये एक नैतिक नैतिक इंडिकेटर है या नैतिक थर्मोमीटर है.
When you do good,
जब आप अच्छा करते हैं,
it commends you.
तब वो आप कहता है तुमने बढ़िया किया.
When you do bad,
जब आप खराब करते हैं,
it convicts you.
तब वो आपको चिताता है.
If your conscience is not pure,
जब आप अगर आपका विवेक शुद्ध नहीं है,
it will not work properly.
तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा.
Now the problem with many preachers,
बहुत सारे प्रचारकों के साथ दिक्कत ये है,
is they have a weak conscience.
कि उनका जो विवेक है वो बहुत कमजोर है.
Their conscience is not strong.
उनका विवेक कमजोर.
And you do a little sin,
जब आप छोटा पाप करते हैं,
and you're not convicted,
और अगर आपका विवेक आपको
and
नहीं
you don't confess it,
और आपका विवेक नहीं कचोड़ता और आप क्षमा नहीं मांगते,
and it's like garbage piling up in your home,
तो क्या हो रहा है कि आपके घर में जैसे कूड़ा बढ़ता चला जा रहा है.
You don't confess your sin,
अगर आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करते,
more garbage,
तो और कूड़ा आ रहा है.
If you didn't take out the garbage in your house for one month, what would happen?
अगर आप अपने घर में से कूड़ा एक महीने के लिए बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा आपके घर में?
You'd be like this. Many preachers' lives are full of garbage.
बहुत सारे जो प्रचारक हैं उनका जीवन कूड़े से भरा हुआ है.
Because their conscience is not working properly.
क्योंकि उनका जो विवेक है वो सही से काम ही नहीं कर रहा है.
Look in the book of Romans.
रोमियों के पत्र में देखें.
We're talking about inward holiness.
हम अंदरूनी पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं.
We're talking about your conscience.
हम आपके विवेक के बारे में बात कर रहे हैं.
God wants your conscience to be pure.
परमेश्वर चाहता है कि आपका विवेक संपूर्णता से शुद्ध हो.
Romans chapter 2.
रोमियों का दूसरा अध्याय.
All men have a conscience.
सारे व्यक्तियों के पास एक विवेक है.
Verse 12.
12 पर.
Those who sin without the law will perish without the law.
जिन्होंने बिना व्यवस्था के पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे.
Those who have sinned under the law will be judged by the law.
जिन्होंने व्यवस्था के पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा.
Verse 14.
14 पर.
The Gentiles don't have the law; they do by nature the things of the law.
फिर जब गैर यहूदी जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव से व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं.
They have a law unto themselves.
तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे उस दिन वे अपने आप व्यवस्था में हैं.
Verse 15.
15 पर.
They show the work of the law written in their hearts.
व्यवस्था के कार्य को अपने हृदय पर लिखा हुआ दर्शाते हैं.
Their conscience bearing witness. Their thoughts either accusing or defending them.
और उनके विवेक भी साक्षी देते हैं उनके विचार कभी उन्हें दोषी है कभी निर्दोष ठहराते हैं.
What is the function of the conscience?
जो विवेक है उसका कार्य क्या है?
When you do wrong, it condemns you.
जब आप गलत काम करते हैं तो वो आपको दोषी ठहराता है.
When you do right, it commends or defends you.
और जब आप सही करते हैं तो वो आपको आपका साथ देता है या आपकी आपको संभालता है.
And if you're going to be holy,
यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं
you must keep a clean conscience.
तो हमें अपने विवेक को स्वच्छ रखना है साफ रखना है.
Second Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
We're talking about inward holiness.
हम बात कर रहे हैं अंदरूनी पवित्रता की.
Listen to Paul.
पौलुस को सुनिए आप.
Verse 12.
12 पद.
Our proud confidence is this.
क्योंकि हमारा गर्व अर्थात हमारे विवेक साक्षी ये है.
The testimony of our conscience.
अर्थात हमारे विवेक की साक्षी.
That in holiness and godly sincerity.
कि हमने पवित्रता और भक्तिपूर्ण सच्चाई से.
Not in fleshly wisdom, but in the grace of God.
शरीर संसार के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में होकर.
We conducted ourselves in the world and especially toward you.
हमने संसार में और खासतौर से तुम्हारे सामने अपने आप को इस तरह से पॉलिस क्या कह रहा है.
दिस इज आवर कॉन्फिडेंस.
ये इस बात में हमारा गर्व है.
आवर कॉन्शियंस इज स्पीकिंग टू अस.
ये हमारा जो विवेक है वो हमसे बात कर रहा है.
एज टू आवर मोटिव्स एंड आवर एक्शन.
हमारे उद्देश्यों के प्रति और हमारे कार्यों के प्रति.
That in holiness of life,
कि जीवन की पवित्रता में
and sincerity of motive,
और उद्देश्यों की गंभीरता में
we have conducted ourselves in the world and in the church.
हमने उसी तरह से इस संसार में और कलीसिया के अंदर ऐसा जीवन व्यतीत किया है.
Paul was very concerned about his conscience.
पौलुस अपने विवेक के बारे में बहुत ही चिंता रखता था.
His goal was to keep a pure conscience.
उसका उद्देश्य ये था कि वो एक शुद्ध विवेक को रखे.
Do you ever think about your conscience?
क्या आप कभी अपने विवेक के बारे में सोचते हैं?
Is your conscience working properly?
क्या आपका विवेक सही तरीके से काम कर रहा है?
When you go to the airport,
जब आप एयरपोर्ट जाते हैं,
and you go through security,
और आप वहाँ पे जो सुरक्षा की जगह होती है, वहाँ पे जाते हैं,
electric door,
तो वहाँ पे एक बिजली का दरवाजा होता है,
and you have to take everything out of your pocket,
और उसमें से आपको अपने हर एक चीज निकाल लेना होता है,
and you go through the door,
और उस मेटल डिटेक्टर से होकर जब आप जाते हैं,
and if you still have something in your pocket,
और अगर उस गेट में अगर आपकी जेब में फिर भी कुछ बचा हुआ है,
beep, 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 beep. And you go back.
फिर आप वापस जाते हैं.
Now that's the way your conscience is supposed to work.
और आपका जो विवेक है उसको भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए.
When there's sin in your life,
जब अगर आपके जीवन में पाप है,
it ought to do this.
तो उसको यही करना चाहिए.
Beep, 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 beep. But some men's conscience.
लेकिन कुछ व्यक्तियों का जो विवेक होता है
is weak.
कमजोर होता है.
It is seared.
और वो बुझ गया है.
It is polluted.
वो उसमें गंदगी आ गई है.
And they sin.
और वो लोग पाप करते हैं.
And they don't confess it.
और वो लोग अंगीकार नहीं करते.
And the conscience goes beep 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 beep. They sin again.
और यद्यपि उनका विवेक आवाज करता है, लेकिन फिर भी वो पाप करते रहते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं.
They sin again.
और फिर वो पाप करते हैं.
They don't confess it.
और वो अंगीकार नहीं करते.
And the conscience does this. It's dead. No sensitivity.
अब कुछ भी समझ नहीं बची.
If you're going to be holy,
अगर आप पवित्र होना चाहते हैं,
one of your great responsibilities,
आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है,
is to keep a good conscience.
कि अपने विवेक को अच्छा रखिए.
Look in Acts.
प्रेरितों काम में देखिए.
Chapter 24. Let's see if it's in chapter 24. Where is that verse? You tell me.
वो पद कहाँ है? मुझे बताइए कौन कहाँ
है? Paul said, "I do. I always seek." To be had, keep a good conscience before God and man.
पौलुस कहता है कि मैं हमेशा अपने विवेक को परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने बस
16. All right.
16 पद.
Look at the verse.
देखिए यहाँ पे ध्यान से.
In view of this fact.
और इस तथ्य के मद्देनजर.
What's he talking about?
वो क्या कह रहा है?
He's talking about verse 15.
वो 15 पद की बात कर रहा है.
And what did he say in verse 15?
और 15 पद में क्या कहता है?
That there will be a resurrection of the righteous and the wicked.
कि धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा.
There's a judgment coming.
एक न्याय का दिन आने वाला है.
And in light of this judgment, I always seek to keep a good conscience, a blameless conscience.
और इस न्याय के प्रकाश में मैं एक शुद्ध विवेक रखना चाहता हूँ.
Before God and man.
परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने.
And if you want to be holy,
और अगर आप पवित्र होना चाहते
हैं, you must guard your conscience.
तो आपको अपने विवेक को सुरक्षित रखना
है. You must seek to keep a good and a sensitive conscience.
तो आपको अपने विवेक को एक 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 शुद्ध और एक sensitive. संवेदनशील विवेक रखना है.
First Timothy.
पहला तिमोथी. Thank you. पहला तिमोथी
चैप्टर 1
उसका पहला अध्याय. पहला तिमोथी पहला अध्याय.
When Paul preached, this was his goal.
जब पौलुस प्रचार करता है तो ये उसका उद्देश्य है.
Chapter 1, verse 5.
पहला अध्याय उसका पांचवा पद.
Look at the verse.
इस पद को ध्यान देखिए.
But the goal of our instruction is love.
परंतु मेरे इस आदेश का अभिप्राय प्रेम है.
And where does love come from?
और प्रेम कहाँ से आता है?
It comes from three things.
तीन चीजों से आता है.
A pure heart.
एक शुद्ध विवेक.
A good conscience.
एक अच्छा विवेक.
And a sincere faith.
और निष्कपट विश्वास.
Why is holiness important?
पवित्रता क्यों जरूरी है?
Why must your heart be pure?
क्यों आपका हृदय पवित्र होना चाहिए?
Why must your conscience be good?
क्यों आपका विवेक अच्छा होना चाहिए?
Why must your faith be sincere?
क्यों आपका विश्वास निष्कपट होना चाहिए?
Because that's the source of true love.
क्योंकि वही सही सच्चे प्रेम को उत्पन्न करता है.
Paul said, when we preach,
जब हम प्रचार करते हैं,
our goal is to produce true love.
हमारा उद्देश्य है कि हम सच्चे प्रेम को उपस्थित कर सकें.
And this love comes out of a pure heart.
और ये जो प्रेम है शुद्ध हृदय से होकर के आता है.
And it comes out of a good conscience.
और ये एक अच्छे विवेक में से होकर के आता है.
Your conscience is your best friend.
आपका जो विवेक है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है.
Is your conscience working?
क्या आपका जो विवेक है वो क्या वो काम कर रहा है?
When's the last time you confessed sin?
कौन सी आखिरी बार था जब आपने अपने पापों को अंगीकार किया?
I'm not talking about just general sin.
मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि साधारण सारे पापों की बात कर रहा हूँ.
Specific sin.
मैं किसी विशेष पाप की बात कर रहा हूँ.
Do you confess your sin?
क्या आप अपने पापों को का अंगीकार करते हैं?
Why must the Christian confess his sin?
क्यों करके मसीही को अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए?
If his sin is already forgiven.
यदि हमारे पाप पहले से क्षमा हो चुके हैं.
If he is justified.
अगर हम धर्मी ठहरा लिए.
If he is fully accepted.
अगर हम पूरी तरह से स्वीकार कर लिए गए हैं.
Why does the Christian confess his sin?
क्यों एक मसीही जो अपने पापों की क्षमा को अंगीकार करता है?
1 John chapter 1.
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय.
If we confess
यदि हम अपने पापों को मान लेते
हैं, He is faithful and just to forgive us of our sin.
तो वो विश्वास योग्य धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए.
Why does the Christian confess sin?
एक मसीही क्यों करके पापों को अंगीकार करता है?
If someone came to you,
अगर कोई आपके पास आए,
you're the pastor,
और आप पासवान हैं,
they ask the question,
और आपसे ये प्रश्न पूछे,
my sin's already forgiven.
मेरे पाप तो क्षमा हो चुके हैं.
Why should I confess my sin?
क्यों मैं अपने पापों को अंगीकार करूं?
What would you tell them?
तो आप उनसे क्या कहेंगे?
If you don't understand the answer to that question,
यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझते हैं,
you cannot help people avoid two extremes.
तो आप अपने लोगों को दो जो विपरीत विचार हैं उनसे रोकने से आप नहीं रोक पाएंगे.
One extreme is legalism.
एक जो विपरीत दूर की बात है वो है नियमवाद.
Antinomianism.
और दूसरा है कोई बात नहीं, कोई भी नियम नहीं.
Why does a Christian confess his sin?
क्यों एक मसीही अपने पापों को अंगीकार करता है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
Because unconfessed sin breaks our communion with God.
क्योंकि अंगीकार ना किए हुए पाप की वजह से हमारा परमेश्वर के बीच में जो मेल में जो संगति है वो टूट जाती है.
It doesn't break our union with God.
हमारा जो परमेश्वर से जो मेल हो गया है उसमें नहीं तोड़ करते हैं.
It breaks our fellowship with God.
लेकिन हमारी परमेश्वर की तरफ से संगति है उसमें रुकावट पड़ती है.
It doesn't change the love of God.
परमेश्वर का प्रेम तो नहीं बदलता है.
When we sin,
जब हम पाप करते हैं,
we don't confess our sin,
और हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते,
and we continue that way for a long time,
और हम उनमें जब बने रहते हैं लंबे टाइम समय तक,
we grieve the Spirit,
हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं,
we displease our Father,
हम अपने पिता को खुश करते हैं,
we lose the sense of the presence of God,
हम परमेश्वर की उपस्थिति का जो ध्यान है उसको खो देते हैं,
and we may lose our assurance of salvation.
और ये भी हो सकता है कि हम अपने उद्धार की जो निश्चयता है उसको खो सकते हैं.
Your union with Christ will never be broken.
जो मसीह के साथ जो आपका मिलन हो गया है उसको तो वो कभी भी आप वो नहीं टूटेगा.
But your close fellowship with Christ may be broken.
लेकिन जो नजदीक संगति है आपकी मसीह के साथ वो जरूर टूट सकती है.
Don't confess your sin.
और अगर आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे,
it hinders your relationship to God.
तो आप जब आपकी जो संबंध परमेश्वर से है वो टूट जाएगा.
Many people say this.
Well, कई से लोग कई लोग ये कहते हैं. मैं तो क्षमा हो गया.
I don't have to confess my sin.
इसलिए मुझे अंगीकार करने की जरूरत नहीं है मेरे पापों
को. But they don't understand the word of God.
लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं.
What did David say?
दाऊद ने क्या कहा?
Psalm 51.
भजन 51.
Restore to me the joy of my salvation.
मेरे जो उद्धार का जो आनंद है वो मुझे पुनः दे दीजिए.
He didn't say restore my salvation.
उसने ये नहीं कहा कि मेरा उद्धार मुझे पुनः दे दीजिए.
He said restore the joy of my salvation.
उसने कहा कि मेरे उद्धार का आनंद मुझे पुनः दे दीजिए.
Why is the conscience important?
क्योंकि विवेक जरूरी है, महत्वपूर्ण है.
It convicts you of sin.
क्योंकि वो हमारे पापों के लिए कायल करता है.
If your conscience is not working,
अगर हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है,
your conscience is hard,
और अगर आपका विवेक कठोर हो गया है,
it will not convict you.
तो वो आपको कायल नहीं करेगा.
Have you ever burned your skin?
आपने कभी अपनी खाल जलाई है?
It hurts.
और चोट लगती है उस समय.
But one month later.
और एक महीने के बाद.
What has happened?
क्या हो जाता है वहाँ पे?
The nerves are dead.
तो जो वहाँ पे जो नसें होती हैं, nerves होती हैं, वो मर चुकी हैं.
No feeling.
कुछ 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 भी भावना नहीं होती, कुछ आप महसूस नहीं कर सकते.
Paul said many men's consciences are seared with a branding iron.
और पॉलस कहता है कई लोग जो जो विवेक है वो जलते हुए लोहे के साथ दाग दिए गए.
They've lost all feeling.
उनके अब कोई उनके कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भावनाएं नहीं है उनके अंदर.
For example.
उदाहरण तौर पर.
You're at home.
आप घर पे अकेले हैं.
Your wife cooking the supper.
आपकी पत्नी खाना बना रहे हैं.
You're supposed to eat at 6 o'clock.
और आपको 6 बजे खाना खाना चाहिए.
You come home.
आप घर आते हैं
6 o'clock.
6 बजे.
No supper.
खाना नहीं तैयार है.
You get upset.
आप गुस्सा हो जाते हैं.
You scold your wife.
आप अपनी पत्नी को डांटते हैं.
Where's the supper?
खाना कहाँ है?
You sin.
आपने पाप किया.
You're angry.
आप गुस्सा हुए.
But you don't confess your sin.
लेकिन आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करते.
And a little garbage.
और थोड़ा सा जो कूड़ा है.
Is dumped in your house.
आपके घर में डाल दिया गया.
You go into the children's room.
और अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं.
They're very disobedient.
और वो लोग अनाज्ञाकारी हैं.
You take up a big stick.
और आप एक बड़ी डंडी लेते हैं.
You beat them like a dog.
और आप उनको कुत्ते के समान मारते हैं.
No patience or gentleness.
कोई संयम नहीं है, कुछ भी नम्रता नहीं है.
You discipline them in anger.
और आपने उनको गुस्से में अनुशासित किया है.
The next day you're at home.
अगले दिन आप घर पे हैं.
A brother calls you on the phone.
एक भाई आपको फोन पे बुलाता है.
Your wife answers the phone.
आपकी पत्नी उत्तर देती है.
You don't want to talk to him.
आप उसे बात नहीं करना मांगते.
So what do you say?
तो आप क्या कहते हैं उससे?
Tell him I'm not here.
उससे कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ.
You lie.
आपने झूठ बोला.
And you led your wife into lying.
ना सिर्फ आपने झूठ बोला, आपने अपनी पत्नी को भी झूठ बोलने से
scolded your wife.
आपने अपनी पत्नी को डांटा.
In anger, you disciplined your children.
और गुस्से में आपने अपने बच्चों को अनुशासित किया.
Then you told a lie.
फिर उसके बाद आपने झूठ बोला.
Little sins.
छोटे पाप.
Unconfessed.
लेकिन आपने अंगीकार नहीं
किया. High law.
और बढ़ते चले आ रहे हैं.
Remember David.
याद रखिए दाऊद को.
One look.
एक निगाह थी सिर्फ.
One look.
सिर्फ एक निगाह.
And it destroyed his kingdom.
और उसने उसके राज्य को बर्बाद कर दिया.
Unconfessed sin.
और ना अंगीकार किया हुआ
पाप. Unrepented sin.
ना पश्चाताप किया हुआ पाप.
If your conscience is not working properly,
अगर आपका विवेक ठीक तरीके से नहीं कार्य कर रहा है,
you will not confess your sin.
तो आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे.
And if you don't confess your sin,
अगर आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे,
the Holy Spirit will fly away.
तो पवित्र आत्मा आपके पास से हट जाएगा.
You will grieve the Holy Spirit.
तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे.
You will lose a sense of joy.
और आप आनंद का जो उधार का जो आनंद
पावर
और जो तामस का जो अनुभव है उसको खो देंगे.
प्रॉब्लम
दिक्कत क्या है?
अनहोली कॉन्शियंस
और जो अपवित्र विवेक है.
टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल होलीनेस.
हम बात करें व्यवहारिक पवित्रता की.
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरी हियर.
हम यहाँ पे केवल पाठशाला में पढ़ने वाली बात
नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल क्रिश्चियनिटी.
लेकिन हम वास्तविक मसीही जीवन की बात कर रहे
हैं. गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर हार्ट.
मसीह परमेश्वर आपके जीवनों में हृदय में
इंटरेस्टेड इन योर थॉट्स.
वो आपके हृदय में रुचि रखता है, आपके विचारों में रुचि रखता है और आपके विवेक में रुचि रखता है.
इज योर कॉन्शियंस वर्किंग?
क्या आपका विवेक काम कर रहा है?
When's the last time you were convicted of sin?
पिछली बार कौन सा वो समय था जब आपने कुछ गलत काम किया और आपके विवेक ने आपको कचोटा?
When's the last time you confessed your sin?
पिछली बार कब आपने अपने पापों को अंगीकार किया?
James says, confess your sins to one another.
याकूब कहता है अपने पापों को एक दूसरे से अंगीकार करो.
If you hadn't confessed your sins in one month,
अगर आपने पिछले एक महीने में अपने पापों को नहीं अंगीकार किया,
two possibilities.
हो सकता है दो संभवता है.
You're the holiest man that ever lived in India.
हो सकता है कि आप इन भारत में सबसे पवित्र आदमी हुए जो आज तक जीवित हुआ है.
Or your conscience is not working properly.
हो सकता है आपका विवेक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है.
When's the last time you confessed your sin to your wife?
पिछली बार कौन सा समय था आपने अपनी पत्नी से अपने पापों के लिए अंगीकार किया?
Many preachers,
बहुत सारे प्रचारक,
if they went home,
अगर वो घर जाएंगे,
and looked their wife right in the eye,
और अपनी पत्नी की आंखों में देखेंगे,
and held her hand,
और उसके हाथ पकड़ेंगे,
and said this,
और उसे ये कहेंगे,
my dear wife,
मेरी प्रिय पत्नी,
yesterday I sinned against you,
कल मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया,
I was angry with you,
मैं तुमसे गुस्सा था,
I ask you to forgive me,
मैं तुमसे कहता हूँ मुझे क्षमा कर दो.
If many preachers did that to their wife,
अगर बहुत सारे प्रचारकों ने अपनी पत्नी
से ऐसा किया, तो
उनकी पत्नी लोग क्या करेंगे?
She'd pass out.
वो बेहोश हो जाएंगे.
You confess your sins to your wife.
तुमने अपनी पत्नी से अपने पापों को अंगीकार किया.
You say that's not what Indian men do.
ये जो भारतीय जो आदमी जो पुरुष लोग होते हैं ऐसा नहीं करते ना.
But that's what holy men do.
लेकिन ये जो पवित्र लोग हैं पुरुष लोग हैं वो ऐसा करते हैं.
They have humility.
उनके अंदर नम्रता होती है.
They're willing to confess their sin.
वो अपने पापों को अंगीकार करते हैं.
They have a sensitive conscience.
उनका जो विवेक होता है वो संवेदनशील होता है.
Now I've been married 40 years.
अब मैं विवाह को 40 वर्ष हो गए.
My wife is very sensitive.
मेरी पत्नी बहुत संवेदनशील है.
She has a very sensitive conscience.
उसका जो विवेक है वो बहुत संवेदनशील है.
But I have a very thick conscience.
लेकिन मेरे पास बहुत मोटा विवेक है.
It's like wood.
वो लकड़ी के समान है.
And I have to pray continually for a sensitive conscience.
और मुझे लगातार निरंतर प्रार्थना करना पड़ता है कि मेरे पास एक संवेदनशील विवेक हो.
And to have a humble spirit.
और ताकि मेरे पास एक नम्र आत्मा हो.
And to confess my sin.
और ताकि मैं अपने पापों को अंगीकार करूं.
And to be willing to bring myself low.
और ताकि मैं अपने आप को नीचे लाने के लिए तैयार हो सकूं.
Are you willing to do that?
क्या आप ये करने के तैयार हैं?
If you don't confess your sin,
अगर आप अपने पापों को नहीं अंगीकार करते
हैं,
तो आपका विवेक काम नहीं कर रहा.
If your conscience doesn't work,
अगर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है,
you'll lose joy,
तो आप अपने आनंद को खो देंगे, अपनी सामर्थ्य को खो देंगे, अपने अभिषेक को खो देंगे, अपने निश्चयता खो देंगे, परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे और आपके पास कोई प्रभाव नहीं होगा.
True holiness,
सच्ची पवित्रता
affects your conscience,
आपके विवेक पे असर डालती है.
Is your conscience working?
क्या आपका विवेक कार्य कर रहा है?
True holiness,
सच्ची पवित्रता
begins within.
अंदर से शुरू होती है.
We're talking about practical Christianity.
हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक मसीहत की.
If you want the power of God,
यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं.
If you want the joy of the Lord,
यदि आप परमेश्वर के आनंद को चाहते हैं.
If you want deeper assurance,
यदि आप और गहरी निश्चयता को चाहते हैं.
If you want close fellowship,
यदि आप मसीह के साथ और संगति को चाहते हैं.
You've got to ask God to search your heart,
हमें कहना है प्रभु हमारे हृदय को जांचिए.
Give you a sensitive conscience,
हमें एक संवेदनशील विवेक दीजिए.
And be willing to confess your sin,
और अपने पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार होइए.
Sin does not break your union with God.
पाप आपका परमेश्वर के साथ जो मिलन है उसको नहीं तोड़ता है.
But it hinders your fellowship with God.
लेकिन जो आपकी उसके साथ संगति है उसमें जरूर रुकावट डालता है.
That's why we confess our sin.
इसीलिए हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं.
But if your conscience is not sensitive,
लेकिन अगर आपका विवेक संवेदनशील नहीं है,
you'll go for weeks,
तो आप हफ्तों तक चले जाएंगे
and not confess your sin.
और आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे.
The motives of the heart,
आपके हृदयों के उद्देश्य,
the thoughts of the mind,
आपके मस्तिष्क के विचार,
the testimony of the conscience,
आपके विवेक की गवाही,
and number four,
और चौथी बात,
the brokenness of the will,
और जो हमारी इच्छा का टूटापन,
a holy man,
और जो एक पवित्र व्यक्ति है,
has a broken will,
उसकी इच्छा टूटी हुई इच्छा होती है उसके पास.
What do we mean?
मेरे कहने का मतलब क्या है इसका?
He is not self-willed.
वो अपने स्वयं की इच्छा शक्ति पे नहीं
चलता. He doesn't insist on his own way.
वो अपने स्वयं के मार्ग पे चलने की जोर जबरदस्ती नहीं करता.
He is a gentle man.
वो एक नम्र व्यक्ति है.
He is a meek man.
वो एक दीन व्यक्ति है.
He doesn't defend himself.
वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता.
When he is criticized,
जब उसके ऊपर नुक्ताचीनी की जाती
है, he doesn't criticize in return.
तो फिर वो पलक के वार करने की कोशिश नहीं करता.
When people persecute him,
जब लोग उसको सताव करते हैं,
he doesn't respond in anger.
तो फिर गुस्से में उसका प्रतिउत्तर नहीं करता.
When someone slaps him on the right cheek,
जब कोई उसके दाएं गाल पे थप्पड़ मारता है,
he turns the other.
तो वो दूसरा पलट देता है.
Why?
क्यों?
Because his will has been broken.
क्योंकि जो उसकी जो इच्छा है वो टूट चुकी है.
1 Corinthians 13.
पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय.
One of the characteristics of love.
और प्रेम का एक 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 चित characteristics.
Characteristics. Chapter
13.
Verse 5.
पांचवा पद.
It does not seek its own.
वो अपने स्वयं की भलाई नहीं चाहता.
When a man has a broken will,
और जब एक आदमी की टूटी हुई इच्छा होती है,
he doesn't seek his own will.
तो वो अपनी स्वयं की इच्छा को नहीं ढूंढता है.
He says what Jesus said.
वो कहता है जो यीशु कहता है.
In the garden of Gethsemane.
और गतसमनी के बाग में.
What did he say?
उसने क्या कहा वहाँ पे?
Not my will.
मेरी इच्छा नहीं.
But thy will be done.
लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो.
A holy man has a broken will.
एक जो पवित्र व्यक्ति होता है उसकी टूटी हुई इच्छा होती है.
His will has been broken.
जो उसकी इच्छा है वो टूट चुकी है. उसकी मनता खुद की इच्छा टूट चुकी होती है.
In the book of Titus,
और तीतुस की पत्री में,
and chapter 1,
और पहले अध्याय में,
the qualifications for church leaders,
और जो कलीसिया के जो अगुए हैं उनके लिए वहां पे गुण दिए गए हैं.
Verse 7,
पहला अध्याय उसका सातवां पद.
The overseer must be above reproach as God's steward.
जो अध्यक्ष है वो परमेश्वर का भंडारी होने की वजह से निर्दोष होना चाहिए.
Look what he says next.
देखिए उसके बाद क्या क्या कह रहा है.
Not self-willed.
स्वेच्छाधारी ना हो, खुद की इच्छा पे ना चलने वाला हो.
He does not seek his own.
वो खुद की चिंता नहीं ढूंढ रहा, अपने बारे में नहीं सोच रहा है.
He does not insist on his own way.
वो अपने स्वयं के मार्ग, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं चाहिए, मेरा समझौता नहीं है.
A rebellious man.
वो विद्रोही व्यक्ति नहीं है.
He's willing to submit to authority.
वो अपने अधिकारियों के अधीन होने के तैयार है.
The authority of God.
परमेश्वर के अधिकार के अधीन.
And the authority of man.
और मनुष्य के अधिकार के अधीन.
He doesn't promote himself.
वो अपने आप को केवल आगे नहीं बढ़ाता.
He doesn't insist on his own way.
केवल अपने स्वयं के मार्ग की ओर जबरदस्ती नहीं करता.
He doesn't defend himself.
और अपने आप को बचाता नहीं, सुरक्षा नहीं करता.
He does not strike back.
और वो पलट के वार नहीं करता है.
He's like Moses.
वो मूसा के समान है.
You remember Moses?
क्या तो याद है मूसा?
In the book of Numbers.
और गिनती की पुस्तक में.
Chapter 12.
12 अध्याय में.
Chapter 14.
अच्छा 14 अध्याय में.
Chapter 16.
16 अध्याय में.
It says it again and again.
और बार बार वहाँ पे कहा गया है.
When Moses was criticized.
जब मूसा के ऊपर नुक्ताचीनी की गई, दोष लगाया गया, उसने क्या किया?
When Moses was criticized, what did he do?
जब मूसा के ऊपर दोष लगाया गया तो मूसा ने क्या किया?
Every time.
हर बार, हर एक बार.
Fell on his face.
अपने चेहरे पे गिर गया.
They criticized him.
उन्होंने उस पर दोष लगाई, निंदा आलोचना की.
He fell on his face.
वो अपने चेहरे पे गिर गया.
They criticized him again.
जब उन्होंने उसको फिर से उसकी आलोचना की.
He fell on his face.
वो अपने मुख पे गिर गया.
Why?
क्यों करके?
Because he was the meekest man on the face of the earth.
क्योंकि वो इस पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था.
Because his will had been broken.
उसको दीन उसकी इच्छा को टूट चुकी थी.
When people criticize you.
जब लोग आपकी आलोचना करते हैं.
When people are angry with you.
जब लोग आपसे गुस्सा होते हैं.
When people gossip about you.
जब लोग आपके बारे में गपशप करते हैं.
What do you do?
तब आप क्या करते हैं?
Do you strike back?
क्या आप पलट के वार करते हैं?
Do you have anger in your heart?
या आपके हृदय में गुस्सा होता
Or
है?
Or do you fall on your face?
या आप अपने चेहरे पे गिरते हैं?
When a man's will is broken.
जब एक व्यक्ति की इच्छा टूट चुकी होती है.
He falls on his face.
वो अपने चेहरे पे गिरता है.
Holiness.
पवित्रता.
Of heart.
हृदय की,
mind,
मस्तिष्क की,
conscience,
विवेक की,
and will,
और इच्छा की.
The motives of the heart,
हृदय की मनसाएं,
the thoughts of the mind,
मस्तिष्क की विचार,
the testimony of the conscience,
विवेक की गवाही,
and the brokenness of the will,
और इच्छा का टूटा होना.
Problem with many preachers.
बहुत सारे प्रचारकों का परेशानी ये है.
Their wills never been broken.
उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी टूटी नहीं है.
God uses broken men.
परमेश्वर टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करता है.
Who are dying to self.
जो स्वयं के लिए मर रहे हैं, अपने आप के लिए.
That the Spirit of God has taken the cross and has driven it into his heart.
परमेश्वर की आत्मा ने क्रूस लेकर के उनके हृदय में भेज दिया है.
And he is dying to self.
और वो स्वयं के प्रति, स्वयं के लिए नित्य मरता चला जा रहा है.
He doesn't promote himself.
और वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है.
And he doesn't seek his own will.
और वो अपनी इच्छा को नहीं लोगों के सामने रख रहा है.
True holiness.
सच्ची पवित्रता
begins within.
अंदर से शुरू होती है.
In the depth of the heart.
और हृदय की गहराइयों में.
And the thoughts of the mind.
और मस्तिष्क के विचारों में.
And in your conscience.
और आपके विवेक में.
And in your will.
और आपकी इच्छाओं में.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Do you want to be truly holy?
क्या आप वास्तविक रीति से पवित्र होना चाहते हैं?
Do you want to grow in real holiness?
क्या आप सच्ची पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं?
Do you want to be like Jesus Christ?
क्या आप यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं?
He said, I always do those things pleasing to my Father.
उसने कहा कि मैं वे सारी चीजें करता हूँ जो मेरे पिता को प्रसन्न करती हैं.
That was his motive.
यही उसका उद्देश्य था.
And he said, "Not my will, but Thy will be done."
उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो.
If you want to be like Christ,
यदि आप मसीह के समान बनना चाहते हैं,
then you must begin within.
तो फिर आपको अंदर से आरंभ करना है.
Man looks on the outside.
मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखता है.
God looks at the heart.
किंतु परमेश्वर हृदय को देखता
है. Don't be like a Pharisee.
फरीसी के समान मत बनिए.
Outwardly like whitewashed tomb.
बाहर से तो पूरा चूना पोती हुई कब्रें.
Inwardly full of dead men's bones.
लेकिन अंदर से तो मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों से भरे हुए हैं.
If you forget everything else I've said.
यदि आप सब कुछ भूल जाएं जो कुछ भी मैंने आज कहा है आपसे.
Remember this.
लेकिन आप इस बात को याद रखिए.
True holiness begins within.
सच्ची पवित्रता अंदर भीतर से शुरू होती है. अपने हृदय को सुरक्षित रखिए. अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखिए. एक संवेदनशील विवेक रखिए.
Pray for a broken will.
एक टूटी हुई इच्छा के लिए प्रार्थना कीजिए.
That will produce holiness.
वही पवित्रता को उत्पन्न करेगा.
Let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे.